امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے کے حالات کو مختصراً بیان کریں گے۔ آیت اللہ سید علی خامنہ یہ اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں یہ لکھتے ہیں کہ تاریخ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کو بیان کرنے سے قاصر ہے جو 10 سال ہارون کے عہد میں اور 5 سال اس کی خلافت کے بعد خراسان اور بغداد کی خانہ جنگی کے دوران رونما ہوئے، لیکن عقلی دلائل سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی امام نے اپنے آبا و اجداد کی طرح دین اسلام کو زندہ رکھنے کی جدوجہد جاری رکھی۔ اپنے پدر بزرگوار امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام نے جو دور ہارون رشید کے دور میں زمانے میں گزارا، اس میں ہارون کی طرف سے دباؤ میں کچھ کمی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہارون امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو قید خانے میں شہید کر چکا تھا اور وہ اپنے اس جرم پہ پردہ ڈالنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس دوران امام نے اہم امور انجام دیے، مثلا شاگردوں کی تربیت کی، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی، اور جو زمانہ امین کے عہد میں گزارا امام نے، اس میں مختلف موضوعات پر سب سے زیادہ احادیث بیان فرمائیں۔ سیرت ائمہ اہل بیت میں علامہ ہاشم معروف حسنی نے یہ لکھا کہ ہارون نے اپنے بعد اپنے بیٹے محمد امین کو ولی عہد مقرر کیا تھا، اور محمد امین کے بعد عبداللہ مامون کو، اور اس کے بعد اپنے بیٹے قاسم کو ولی عہد بنایا تھا، اور ہارون رشید نے ان کے درمیان علاقوں کی تقسیم بھی خود ہی کر دی تھی۔ ہارون کے مرنے سے پہلے ہی محمد امین اور عبداللہ مامون دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ بعض مورخین اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ ہارون نے مامون کو خراسان اور اس کے اطراف میں وسیع اور زرخیز علاقے دیے، اور مامون کے لیے اس علاقے کے اراکین دولت اور فوجی جرنل سے بیعت لی۔ اس کے علاوہ بھی مامون کو اور مال و دولت دیا۔ اپنے باپ ہارون کے اس عمل کو امین نے اپنے لیے توہین خیال کیا، کیونکہ وہ ولی عہد اول تھا اور ضروری تھا کہ حکومت کی اس قسم کی مراعات امین کے لیے ہوں، جبکہ امین کچھ بھی صلاحیتیں نہیں رکھتا تھا۔ ہارون نے اس کو ولی عہد اول بھی صرف اس لیے بنایا تھا کہ وہ محل کی صاحب فضیلت خاتون زبیدہ کا بیٹا تھا۔ زبیدہ جعفر ابن منصور دوانقی کی دختر تھیں، جبکہ مامون کی ماں باورچی خانے کی کنیز تھی۔ بہرحال امین اور مامون کے درمیان معاملات پیچیدہ ہوتے چلے گئے، اور امین نے اپنے بھائی مامون کو ولی عہدی سے معزول کر کے اس کی جگہ اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ ہارون کے مرنے کے بعد کی بات ہے کہ یہ امین نے عمل انجام دیا کہ اس نے مامون کی جگہ اپنے بیٹے کو موسیٰ کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ امین کے اس عمل سے، جو یہ امین نے عمل انجام دیا، دھوکہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ، مامون کے ساتھ، تو مامون پہ بہت اس کا برا اثر ہوا۔ اس نے دارالحکومت بغداد پر قبضہ کرنے کے لیے مضبوط لشکر تیار کر لیا۔ ادھر امین نے بھی مامون کے زیر تسلط علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور مامون کو اپنے بھائی امین پر فتح ہوئی۔ اس معرکے میں امین قتل ہو گیا اور ہزاروں فوجی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ حکومت مامون کو حاصل ہو گئی۔ مامون نے سلطنت کی خاطر اپنے بھائی اور ہزاروں سپاہیوں کو قتل کر ڈالا، بقول اس کے کہ یعنی مامون کے بقول کہ اس نے اپنے باپ ہارون کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ بیٹے، حکومت میں کوئی رشتہ تعلق نہیں ہوتا، اگر اس کے لیے تم بھی مجھ سے جھگڑا کرو گے تو میں تمہاری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا۔ اسی اصول کی بنا پر مامون حکومت کی خاطر بھائی کے قتل کا مرتکب ہوا۔ حکومت پہ قابض ہونے کے بعد مامون نے یہ محسوس کیا کہ بغداد میں ان بہت سے عباسیوں میں انتقام کا جوش پھیلا ہوا ہے جنہوں نے مامون کے خلاف امین کا ساتھ دیا تھا، یعنی یہ خطرہ عباسیوں کی طرف سے اس کو محسوس ہوا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ تھا کہ آئے دن حکومت کے خلاف علوی سر اٹھاتے رہتے تھے، शिया अब्बासियों के जुल्म की वजह से अब्बासियों से नाला थे, परेशान थे, इसीलिए अब्बासियों की मुखालफत में उठने वाली तहरीकों की हिमायत करते। मामून ने इक्तदार संभाला तो अपनी हुकूमत को ख़तरों में घिरा हुआ महसूस किया। अब्बासियों का सलूक अलवियों के साथ नहायत बुरा था, और वो कौन सा जुल्म था जो अब्बासियों ने अलवियों पर, सादात पर नहीं किया था? इक्तदार के हुसूल के लिए जितना जुल्म अब्बासियों ने किया वो उमावियों के जुल्म से किसी सूरत कम नहीं। इसके अलावा अगर ख़ुद अब्बासी ख़ानदान का भी कोई फ़र्द अब्बासी खिलाफत का मुखालिफ हो जाता था तो उसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता था। मामून ने अपने भाई को ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शहीद मुर्तज़ा मुताहरी सीरत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में ये लिखते हैं कि मामून पढ़ा लिखा शख्स था, तारीख, हदीस, फ़लसफ़ा, अदबियात पे मुकम्मल उबूर उसको हासिल था, तिब व नुजूम पर भी ख़ास महारत हासिल थी। उस वक्त का काबिल तरीन शख्स कह सकते हैं। वो कहते हैं कि शायद सलातीन व खुलाफा में मामून जैसा काबिल शख्स पैदा ही नहीं हुआ, मगर इसके साथ ही ज़ालिम मुनाफिक तरीन शख्स था। और उस इल्म का क्या फ़ायदा जो उस्ताद की तज़ीम का दर्स ना दे, जिसे इंसान जुल्म व सितम और गुनाह में इस्तेमाल करे। बहरहाल 198 हिजरी में जब मामून अपने भाई अमीन के ख़िलाफ़ जंग से फारिग हुआ और ख़िलाफ़त पर काबिज़ हुआ तो उसका अगला हदफ अलवियों और शिया तहरीकों से निमटना था। इस मकसद को हासिल करने के लिए मामून ने साबिका खुलाफा के तजर्बात को सामने रखा तो उसने देखा कि खिलाफत अपनी ताकत के बावजूद शिया तहरीक को नाबूद करना तो दूर की बात, इस तहरीक को महदूद करने और इसे रुकवाने में भी नाकाम रही थी। उसने ये भी देखा कि हारून की शान व शौकत के बावजूद और इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम को मुद्दतों क़ैद में रखने और उन्हें जहर देने के बाद भी खिलाफत शिया तहरीकों, उनकी तबलीगी, फ़िक्री, मुसलहाना जद्दोजहद को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी, और बनी अब्बास की खाना जंगी की वजह से अब्बासी हुकूमत मुश्किलात में घिरी हुई थी। ऐसी सूरत हाल में ज़रूरी था कि मामून अलवियों की तहरीक के ख़तरे की तरफ पहले से ज़्यादा तवज्जो दे। अलवी उस वक्त ज़्यादा इनकलाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे, साल में चंद मरतबा मुल्क के किसी गोशे में हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करते। मामून ने इस ख़तरे को भांप लिया और उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मामून ने इमाम को मदीने से खुरासान आने की दावत दी और इमाम को वलीअहदी कबूल करने पर मजबूर किया। इस वाक़े की मिसाल अपनी नौइयत के लिहाज से इमामत की पूरी तारीख़ में नहीं मिलती। मामून को यकीन था कि जब वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से किसी मोहतरम फ़र्द को हुकूमत में शामिल कर लेगा तो अवामी रद्द अमल में कमी आ जाएगी, और जब वो इमाम को करीब ले आया तो उसने बहुत से इनकलाबियों को माफ़ कर दिया और एक लिहाज से फ़िज़ा खुशगवार हो गई। लेकिन दर हकीकत ये एक चाल थी ताकि दोस्ती का हवाला देकर इनकलाबी तहरीकों को खामोश कराया जाए और फिर मौका मिलते ही एक एक करके इनकलाबियों को ठिकाने लगा दिया जाए। अब जबकि वो इमाम को करीब ले आया था, वलीअहद बना दिया है, तो अलवी सादात भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर किसी कस्म का कदम उठाएंगे तो लोग कहेंगे कि वो अपने आका इमाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ये मामून का ख्याल था। इमाम को वलीअहद बनाने के बाद मामून ने इमाम से मोहब्बत का ड्रामा किया और उसने अपने तमाम गवर्नरों को हुक्म भेजा कि मेंबरों से खुतबों में इमाम के हक़ में दावत दी जाए। जाहिर है जब हुकूमत की तरफ से इमाम का जिक्र किया जाएगा, लोगों को इमाम की तरफ बुलाया जाएगा, तो अलवी सादात हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों कर तहरीक चलाएंगे? मामून ने अपने फरेब को हर तरफ फैलाने के लिए तमाम ज़रूरी कार्रवाइयों का हुक्म भी दे दिया ताकि अलवियों के साथ होने वाले तसादुम से निजात हासिल हो सके और मामून अपनी हुकूमत के मामले में शियों की तरफ से मुतमईन हो जाए। यानी मामून शिया तहरीकों को कंट्रोल करना चाहता था। इसके बाद मामून को कोई भी नज़र नहीं आया जो उसकी हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकता था, सिर्फ वो अब्बासी जो मामून के ख़िलाफ़ अमीन की मदद कर रहे थे, मदद की थी, बस ये लोग थे। मगर ये लोग मामून के लिए उस वक्त तक ख़तरा नहीं बन सकते थे जब तक कि मुमलिकत का बड़ा हिस्सा मामून के कब्ज़े में था। एक सवाल के आइम्मा किराम अलैहिस्सलाम इन शिया तहरीकों की क़यादत ख़ुद क्यों नहीं संभाल लेते थे? उसका जवाब ये मिलता है कुतुब में, सीरत आइम्मा अहले बैत में मिलता है कि आइम्मा ये जानते थे कि इन मुसल्लह तहरीकों का फ़ौरी नतीजा शिकस्त ही होगा, इसलिए कि ये तहरीकें गौर व फ़िक्र के बाद ऐसी सही बुनियादों पर नहीं उठाई गई थीं कि जिनसे उनकी कामयाबी यकीनी हो जाती। आइम्मा इन तहरीकों में शरीक होकर क़यादत संभाल लेते तो ख़ुद उन्हें उन बड़े मकासद में से कुछ भी हासिल नहीं होता जो इस्लाम के मफाद में थे। यानी आइम्मा अलैहिस्सलाम तहरीकों की क़यादत संभाले बग़ैर जो जद्दोजहद अंजाम दे रहे थे वो इस्लाम के मफाद में इन तहरीकों से कहीं ज़्यादा मौसर और कामयाब थी। उस ज़माने में जब हर तरफ़ से हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की जा रही थीं, आइम्मा सकाफ़ती इनकलाब में मशगूल थे जो कि इस्लाम की मसलहत के लिए नहायत ज़रूरी था, और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ मैदानों में कामयाबी हासिल होती थी। इमाम ने और दीगर आइम्मा ने फ़ौजी तहरीक चलाने वाले बाज़ अलवियों की कुछ बातें भी नापसंद फरमाईं, जिसमें से एक मिसाल जो है आइंदा बयान करेंगे। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तहरीकों की क़यादत संभाले बग़ैर ही वो अजीम काम अंजाम दिए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इमाम के ज़माने के हालात की, कि मामून की हुकूमत ख़तरे में घिरी थी, उसने इमाम को वली अहद बनाया, तो उसके पीछे मामून के शैतानी दिमाग में क्या क्या चालें मौजूद थीं। मामून ने अपनी पूरी होशियारी और मनसूबाबंदी के साथ ऐसे मैदान में कदम रखा था कि अगर मामून कामयाब हो जाता तो शियत के दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकता। लेकिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इलाही तदबीर के बलबूते पर मामून पर गालिब आए, और मामून को उस जंग के मैदान में जो खुद मामून का अपना तैयार करता था मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। और न सिर्फ ये कि शियत को कमज़ोर या ख़त्म होने से बचाया, बल्कि 201 हिजरी यानी इमाम की वली अहदी के साल को शियत की तारीख में सबसे ज़्यादा बाबरकत साल शुमार किया जाता है। अलवी तहरीक में नई जान आ गई। ये सब कुछ इमाम के हकीमाना तर्ज़ अमल की बरकत थी और इलाही तदबीर थी। अब यहाँ पे मामून की चालबाजियाँ और इमाम की हिकमत अमली का जायज़ा बयान करते हैं, जायज़ा पेश करते हैं कि मामून का इमाम को खुरासान बुलाना किन अहम मकासद के तहत था। बनी अब्बास की सियासत मुनाफिकाना और खुफिया तर्ज की थी। बज़ाहिर मामून के अमल से मालूम होता है कि वो ये जाहिर करने की कोशिशें कर रहा था कि उसका ये इकदाम यानी इमाम को खिलाफत देने की जो उसने पेशकश की, और जब खिलाफत कबूल नहीं की तो उसने वली अहद तो बना ही दिया ज़बरदस्ती, तो वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि उसका ये इकदाम खुलूस नियत पर मबनी है और वो अलवियों को हकदार तस्लीम करते हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत की वजह से ये कदम उठा रहा है। और उसने ये रियाकारी इतनी महारत से अंजाम दी कि इमाम की शहादत के मसले में मामून को बेकसूर समझा जाता था और मामून को एक शिया या इमाम की जानिब माइल शख्स करार दिया जाता था। वाज़ह सी बात है कि एक अलवी को खिलाफत सौंपना, और वो भी ऐसे हालात में जबकि अब्बासी हुकुमरान शिद्दत के साथ अलवियों की सरकोबी करते थे, ऐसे में मामून की चाल किसी को भी मामून के बारे में गलतफहमी में मुब्तिला कर सकती थी। मामून गैर मामूली सियासी ज़हानत का मालिक भी था, और उसने अपनी खिलाफत के आगाज़ ही से अपनी राह में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को एक एक करके हल किया था और हुकूमत की बुनियादों को मजबूत और अपनी हाकमियत को मुस्तहकम किया था। जब मामून को अब्बासी हुकूमत के तरफदारों की जानिब से इमाम की वलीअहदी पर यानी इमाम को वलीअहद बनाने पर एतराज़ात का सामना करना पड़ा, तो उसने इन एतराज़ात के जवाब में कुछ बातें कहीं जिससे मामून की साजिश वाज़े हो जाती है। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़िक्री और सियासी ज़िंदगी में ये तहरीर है कि मामून ने इमाम के लिए ये कहा कि ये शख्स अपने कामों को हमसे पोशीदा रखते थे और लोगों को अपनी इमामत की तरफ दावत देते थे। हमने इन्हें इसलिए अपना वली अहद बनाया कि वो लोगों को हमारी तरफ दावत दें और हमारी सल्तनत खिलाफत का एतराफ़ करें और उन पर फरेख्ता होने वाले लोग, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है कि और उन पर फरेख्ता होने वाले लोग भी ये जान लें कि वो ऐसे नहीं जैसा कि वो दावा करते हैं और ये अमर खिलाफत हमारा हक है, उनका नहीं। हमें ये खौफ भी था कि अगर हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया तो कहीं वो हमारे मामलात में ऐसा रखना ना डाल दें जिसे हम पुर ना कर सकें और हमारे खिलाफ़ कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसका हम मुकाबला ना कर सकें। अब जबकि हमने उनके साथ ये रवैया अख्तियार कर लिया है और इस मामले में ग़लती के मुर्तकिब हो चुके हैं और उनको बड़ा बनाकर ख़ुद को हलाकत के गड्ढे के किनारे पर ले आए हैं, तो अब हमें उनके बारे में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता उनकी शख्सियत और अज़मत को कम करना चाहिए ताकि लोगों के सामने उन्हें ऐसी सूरत में पेश करें कि लोगों की नज़र में वो लायक खिलाफत ना रहें, और इसके बाद हम उनके बारे में ऐसी तदबीर करेंगे जो उनकी तरफ से हमें लाहक खतरात की रोकथाम कर सके। मामून ने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा ही में अपने अकदाम का मकसद बयान कर दिया, यानी अगर इमाम उसकी वलीअहदी कबूल कर लें तो इसका मतलब है कि उन्होंने बनी अब्बास की खिलाफत को जायज़ मान लिया है, और ये बात कि अलवियों की जानिब से अब्बासियों की खिलाफत को कबूल कर लिया गया है अब्बासियों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। मामून तशय्यो के इस दावे को, जिसके मुताबिक बनी उमय्या और बनी अब्बास की खिलाफतें गासिबाना थीं, बातिल करके उन खिलाफतों को जायज़ करार दिलवाना चाहता था। वो इस चाल के ज़रिए तमाम शियों पर यह साबित करना चाहता था कि शियों के बुनियादी उसूल पर मबनी दावा, जिसकी रूह से उमावी और अब्बासी खिलाफतें गासिबाना और नाजायज़ थीं, ये एक बेबुनियाद बात है और सिर्फ बोस और कीने की वजह से ये नज़रिया गढ़ा गया है। क्योंकि अगर गुज़िश्ता खिलाफतें नाजायज़ और ज़ालिमाना थीं तो मामून की हुकूमत भी तो गुज़िश्ता खिलाफतों का तसलसल है, नाजायज़ और गासिबाना है, फिर इमाम ने वली अहदी क्यों कबूल की? अब इमाम के इस खिलाफत के अरकान में शामिल होने और मामून की जानशीनी कबूल करने से ये बात साबित होती है कि इमाम ने मामून को कानूनी और जायज़ खलीफा समझा है, लिहाजा दूसरे साबिका खुलाफा भी कानूनी और जायज़ थे और शियों का दावा बातिल था। इस चाल से मामून ना सिर्फ इमाम के ज़रिए अपनी हुकूमत और गुज़िश्ता तमाम हुकूमतों के जायज़ होने का एतराफ़ करवाना चाहता था, बल्कि शियों के बुनियादी अकायद में से एक अहम अकीदा कि गुज़िश्ता हुकूमतें जुल्म की बुनियाद पर कायम हुई थीं, वो इस अकीदे को बातिल करार देना चाहता था। और मामून के ख़्याल में इमाम लोगों को ना सिर्फ अपनी वली अहदी की तरफ दावत देते बल्कि इस खलीफा के लिए भी दावत देते जिसकी जानशीनी आपने कबूल की थी। इस तरह उस पहलू का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता कि इमामत औलाद अली अलैहिस्सलाम का मुस्तकिल हक है। इसके अलावा इमाम के दरबार खिलाफत में शामिल हो जाने की वजह से इमाम की सरगर्मियां कंट्रोल और महदूद हो जाती हैं। मामून इमाम को अपने इख्तदार के कंट्रोल में लाना चाहता था और इस तरह तमाम अलवी सरदारों और इनकलाबियों को भी अपने काबू में कर लेना चाहता था। और ये वो कामयाबी थी जो आज तक किसी उमवी या अब्बासी खुलाफा को हासिल नहीं हुई थी। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मामून के कंट्रोल में जंगल में थे और उन पर मुतअद्दिद जासूस और मुहाफिज मुकर्रर किए हुए थे उसने, ताकि वो इमाम की खबरें मामून तक पहुंचाएं। यही सबब था कि इमाम अपने सच्चे शियों से भी दूर कर दिए गए। लोगों के दरमियान इमाम की शख्सियत को उम्मीदों का मरकज़, सवालों और शिकायतों का मरजा और महवर की हैसियत हासिल थी, इसीलिए मामून इमाम को हुकूमती कारिंदों के मुहासरे में महदूद करना चाहता था ताकि आहिस्ता आहिस्ता इमाम और आवाम के दरमियान जो मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता है उसे ख़त्म कर सके। مزید یہ کہ ولی عہدی سے شیعوں کا یہ دعویٰ بھی باطل ہو جاتا کہ آئمہ اطہار علیہم السلام زاہد اور پارسا اور دنیا سے لاتعلق ہیں، بلکہ یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ یہ حضرات صرف اس صورت میں دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے تھے جب تک دنیاوی نعمتیں ان کی دسترس سے باہر ہوتیں، لیکن اب جبکہ دنیاوی نعمتوں کے دروازے ان پر کھل گئے ہیں تو وہ ان کی طرف چلے آئے اور دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی ان سے بہرہ مند ہونے لگے، لہٰذا مامون کی ولی عہد قبول کرنے سے امام علی مقام کے مقام میں نعوذ باللہ کمی واقع ہو جاتی اور امام کے حامیوں کی نظروں میں نعوذ باللہ امام کا مقام کم ہو جاتا، یہ مامون کا خیال ہے۔ جب مامون نے امام سے کہا تھا کہ آپ کو یہ ضرور قبول کرنا پڑے گا، تو امام نے فرمایا تھا کہ میں یہ بات برضا اور رغبت کبھی قبول کر نہیں سکتا۔ جب مامون نے خلافت اور ولی عہدی کی بات کی تھی، اس وقت کا امام کا جواب ہے کہ میں یہ برضا اور رغبت کبھی قبول نہیں کر سکتا، اور امام نے آگے یہ فرمایا کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کہیں کہ علی ابن موسیٰ اب تک دنیا سے کنارہ کشی کرتے رہے اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن اب خلافت کے لالچ میں ولی عہدی انہوں نے قبول کر لی۔ اباسلط نے بھی امام کو ولی عہد بنانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مامون نے امام کو ولی عہد بنایا تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ یعنی امام نعوذ باللہ دنیا پرست ہیں، اس طرح لوگوں کی نظروں میں امام کا مقام کم ہو جائے، چونکہ لوگ ہمیشہ علویوں اور خاص طور پر آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے خاص احترام کے قائل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر غیر معمولی اعتقاد اور اعتماد کیا کرتے تھے، ان کے تقدس کے باعث لوگوں میں ان کے سامنے تسلیم کے جذبات پیدا ہو جاتے تھے۔ مامون کی کوشش تھی کہ آئمہ کے اس تقدس کو ختم کر کے انہیں ان عام انسانوں کی طرح پیش کرے جو اقتدار پر فائز ہو کر ظلم و ستم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جیسی خلافت اور سیاست بنی امیہ اور بنی عباس نے کی، لوگوں کی نگاہ میں خلافت و سیاست ایک قسم کی برائی سمجھی جاتی تھی، اسی لیے ایک مہذب شخص کو اس میں شامل کر لینے سے خود بخود اس کا اثر رسوخ ختم ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کے زہد اور خلافت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور وہ بھی ایسی خلافت جس کے بانی بنی عباس تھے، امام کے مقام کو کم کرتی تھی۔ اسی وجہ سے جب امام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ آپ نے دنیا سے اس قدر پرہیز کا اظہار کرنے کے باوجود مامون کی ولی عہدی کیوں قبول کی، امام جواب میں فرماتے، خدا جانتا ہے کہ میں اسے کتنا ناپسند کرتا ہوں۔ پھر ایک اور مامون کا جو ہے وہ خیال تھا کہ مامون ولی عہدی کے ذریعے اپنے لیے معنوی مقام اور آبرو مندانہ حیثیت حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ اس نے اس زمانے میں ایک ایسے شخص کو اپنی ولی عہدی کے لیے منتخب کیا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، مقدس اور روحانی شخصیت تھے۔ مامون نے ان کے مقابلے میں اپنے بھائیوں بیٹوں کو بھی اس افتخار سے محروم کر دیا تھا، سب لوگ مامون کی تعریفیں کر رہے تھے، کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ دیندار لوگ جب دنیا داروں کی پشت پناہی کرنے لگتے ہیں تو دین داروں کی عزت میں کمی آ جاتی ہے اور دنیا داروں کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ مامون کے خیال میں امام ولی عہد قبول کرنے کے بعد خلافت کے طرفداروں میں شمار ہو جاتے۔ ظاہر ہے امام جیسے عالم اور متقی شخص جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہونے کے ناطے لوگوں کی نظروں میں اعلیٰ مقام اور عزت رکھتے تھے، اگر امام حکومت کے تمام کاموں کو سراہنے کا ذمہ لے لیں تو کوئی شخص بھی حکومت کی مخالفت کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اور خلافت کے لیے بھی کوئی خوف باقی نہیں رہتا، اور یہ وہ مضبوط قلعہ تھا جو خلافت کے تمام برے کاموں پر پردہ ڈال سکتا تھا۔ مامون نے امام کو ولی عہد بنا کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ حکومت کے ہاتھ مضبوط ہیں اور امام حکومت کے ساتھ ہیں۔ مامون کی اس چال میں اس کے علاوہ بھی مقاصد پوشیدہ تھے، اور مامون کی یہ چال اس قدر پیچیدہ، دشوار اور گہری تھی کہ سوائے اس کے کوئی دوسرا شخص اس کو अमली जामा पहनाने में अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकता था। यही वजह है कि मामून के दोस्त और करीबी रिश्तेदार भी इसके मकासद से बेखबर थे। वो भी मामून के मकासद को नहीं जानते थे। बाज़ तारीख़ी वाक़यात से पता चलता है कि फ़जल इब्ने सहल, जो वज़ीर और कमांडर और खलीफा के दरबार का मुकर्रब तरीन आदमी था, वो भी इस चाल की हकीक़त से लाइल्म था। और मामून इस डर से कि कहीं इस पेचीदा चाल की कामयाबी के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना हो, अपनी चाल की असल वजह छुपाने के लिए झूठी दास्तानें गढ़ के लोगों को सुनाता था। सच बात तो ये है कि मामून की सियासत बेमिसल और गहराई से भरपूर थी, लेकिन इस मैदान में उसके मद्दे मुकाबिल इमाम जैसी शख्सियत थी। और यही वजह है कि इमाम ने मामून की शैतानी चाल के बावजूद उसकी पुख्ता और हमागीर तदबीर को एक बेअसर खेल में तब्दील कर दिया। मामून की चालबाजियों के मुकाबले में इमाम ने जो इकदामात किए, उनकी वजाहत भी ज़रूरी है। जब इमाम को मदीने से खुरासान आने की दावत दी गई थी, तो इमाम ने मदीने के लोगों के सामने अपनी दिली कैफियत जाहिर कर दी थी, आश्कार कर दी थी। और जितने लोग आपके गिर्द जमा थे, जान गए थे कि मामून बदनीयती से इमाम को वतन से दूर कर रहा है। इमाम ने हरम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ख़ानदान के लोगों से जुदा होते हुए मदीने से बाहर निकलते वक्त और खाने काबा के अलविदाई तवाफ़ के दौरान गुफ्तार से, ज़बान दुआ, ज़बान गिरिया उजारी से सब पर जाहिर कर दिया कि ये सफ़र आपके लिए सफ़रे मौत है। मामून का ख्याल था कि लोग मामून से अच्छा गुमान रखेंगे और इमाम से बदज़न हो जाएंगे, मगर वो लोग जो मामून की इस दावत को कबूल करने की वजह से इमाम से बदज़न हो गए थे, इस सफ़र के आगाज़ ही में जान गए कि असल किस्सा क्या है, और उनके दिल मामून के ख़िलाफ़ दुश्मनी से भर गए, क्योंकि मामून उनके अजीज़ व बुजुर्गवार इमाम को ज़बरदस्ती उन लोगों से छीन कर कतलगाह की तरफ ले जा रहा था। जब इमाम के सामने वलीअहदी का मामला पेश आया, तो इमाम ने सख्ती के साथ उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। और जब तक मामून ने आपको कत्ल की धमकी नहीं दी, आपने वलीअहदी कबूल नहीं की। यहाँ ये सवाल पैदा हो सकता है कि इमाम ने कत्ल की धमकी के बावजूद भी वलीअहदी क्यों कबूल की? इसका जवाब आइंदा देंगे। अभी इस बात को हम पहले मुकम्मल कर लें कि इमाम ने जो इकदाम किए। बहरहाल, जब मामून ने इमाम को कत्ल की धमकी दी और इमाम ने वलीअहदी कबूल की, तो ये बात हर जगह फैल गई कि इमाम ने मामून के इसरार के बावजूद वलीअहदी और ख़लीफ़ा बनने की तजवीज़ ठुकरा दी है। अरकान हुकूमत ने, जो मामून की चाल से वाकिफ़ नहीं थे, इमाम के इनकार की जगह जगह तशहीर शुरू कर दी। यहाँ तक कि फ़जल इब्ने सहल, जैसा कि बताया कि खलीफा के दरबार का मुकर्रब आदमी था, फ़जल को भी अरकान हुकूमत और मुंतज़िमीन के मजमे में ये कहते हुए सुना गया। उसने कहा कि मैंने इससे पहले खिलाफत को इस कदर जलील हालत में नहीं देखा था कि अमीर अल-मोमिनीन मामून अपने दोनों हाथों से खिलाफत हज़रत अली रज़ा अलैह सलाम को पेश कर रहे थे, मगर वो उसको ठुकरा रहे थे। ख़ुद इमाम भी हर मुनासिब मौके पर इस ओहदे को कबूल करने के बारे में लोगों के सामने वजह बयान करते रहते थे। जाहिर सी बात है, ये बात शहर ब शहर फैल गई और तमाम लोगों को समझ आ गया कि मामून जैसा शख्स, जो खिलाफत के लिए अपने भाई के मुकाबले में कई साल तक जंग करता रहा, जिसने हज़ारों इंसानों को, हत्ता कि अपने भाई को भी कत्ल कर दिया, और नफ़रत और दुश्मनी की वजह से वो अपने भाई के सर को शहर ब शहर फिराता रहा, लेकिन इस ज़माने में एक इंसान ऐसे भी हैं जो वली अहदी को बेपरवाही की निगाह से देखते हैं और कत्ल की धमकी की सूरत में कबूल करने पर तैयार हुए हैं, और वो हैं इमाम अलैहिस्सलाम। एक अहम इस्तदलाल जो इमाम ने मामून के सामने पेश किया और मामून बुरी तरह फंस गया कि या तो वो अपने आबा व अजदाद के लिए खिलाफत के हक़ का इनकार करें, या फिर इमाम से वलीअहदी का इसरार ना करें। मामून ने जब इमाम से कहा कि खिलाफत आपको दे दूं और आपकी बैत कर लूं, तो इमाम ने फरमाया, अगर ये खिलाफत तुम्हारी है और ख़ुदा ने इसे तुम्हारे लिए करार दिया है, तो تو اس صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس لباس کو جسے خدا نے تمہیں پہنایا ہے اتار کر دوسرے کے حوالے کر دو، اور اگر خلافت تمہاری نہیں ہے تو اس صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں تم اسے دوسروں کے حوالے کر دو۔ اور پھر ایک سوال یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب خلافت اگر تمہاری نہیں ہے تو پھر تم اس پر قابض کیوں ہو؟ بہرحال امام نے ولی عہدی کو صرف اس شرط پہ قبول کیا کہ آپ حکومت سے متعلق کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے، یعنی امام مامون کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے، اس کی کسی قسم کی مدد کرنے پر تیار نہیں۔ یہ شرط اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ موجودہ حالات اور حکومت کی طرف سے کیے جانے والے کاموں کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیں، اور لوگ یہ گمان کریں کہ حکومتی معاملات امام کی نگرانی میں چلائے جاتے ہیں یا امام کا ان میں کوئی عمل دخل ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں کوئی آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ جو مسائل مملکت میں پیش آ رہے تھے اور جن احکامات پر عمل ہو رہا تھا ان سب کا ذمہ دار مامون ہی کو سمجھا جاتا۔ امام نے مامون سے اپنی یہ بات منوا کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ امام کی اس شرط کے بعد کہ مملکت کے تمام مسائل اور معاملات کے ذمہ دار پہلے کی طرح اب بھی مامون کو سمجھا جائے گا، کیونکہ 200 سالہ انحرافات کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں امام انہیں قبول نہیں کر سکتے تھے۔ مامون نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ مسئلہ ابھی تازہ ہے اس لیے اس نے شرط معمولی سمجھ کے قبول کر لی، اور یہ سوچا کہ بعد میں آہستہ آہستہ امام کو سرکاری کاموں کی طرف مائل کر لے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام اپنی شرط پہ قائم رہتے تو مامون کے تمام منصوبوں پر پانی پھر جاتا اور اس کے سارے مقاصد نابود ہو جاتے، اور ایسا ہی ہوا کہ امام اپنی شرط پہ قائم رہے اور مامون کے منصوبوں پر پانی پھر گیا۔